आप एक बार ईश्वर के तरफ चल पड़ते और चस्का लग जाता है तो फिर उस आप समझ लो कि ईश्वर ने आपको स्वीकार करना चालू कर दिया, तो फिर आप अस्वीकार क्यों करो। एक शिष्य बोले, गुरुजी अब मुझे आज्ञा दीजिए घर जाने की। गुरु फक्कड़ थे, फक्कड़ लोग गाली बोलते हैं ना तो फलहारी होती है, उसमें गंदी गाली में भी प्यार होता है, रस होती है। अरे बोले, तू तैयार तो मैं तैयार नहीं, मैं तैयार तो वो तैयार नहीं, सारे साले नहीं बोला सारे, अब वो गाली होती क्या सारे। लेकिन वृंदावन में अरे सारे कहां गया था, अरे सारे क्या कर रहा, अरे सारे, ये फलहारी गाली है। अरे सारे वो तैयार तो मैं तैयार नहीं, मैं तैयार तो वो तैयार नहीं, और वो तैयार मैं तैयार तो सारे तू जाने की आज्ञा मान रहा है, उधर जाके क्या झक मारेगा। बोले गुरुजी जो तुम्हारी आज्ञा, तो रह जाओ थोड़ा भी। रह गए, कहां गए, अरे वो सारा कहां गया, साला नहीं सारा, फलहारी गाली हो गई। जाना है क्या घर, बोले गुरुजी अभी तो बड़ी शांति मिल रही है, अभी रहना है, बोले हाँ रहो। गुरु ने कथा सुना दी, क्या कथा सुनाई कि राजा जंगल में घूमने गया। सुन रहा है, सुन रहे हो, चांदनी रात थी, बसंत ऋतु थी, शाम का समय रात्रि में परिवर्तित हुआ। राजा चांदनी का लुत्फ उठाते उठाते देखता है कि एक झोपड़ा है, गौर किया तो एक व्यक्ति टाट बिछाकर पड़ा है, बैठा है। धर्मात्मा राजा को आके मुझे धिक्कार है, मेरे राज्य में और इतने कंगाल लोग रहते हैं, मैं तो गरीबी रेखा से कोई नीचे रहे ऐसा संभव नहीं है, और ये तो गरीबी रेखा को भी और नीचे, नीचे से नीचे है, एक टाट और अकेला बंदा है, जहां का तो कोई बर्तन बुर्तन भी खास नहीं, एक छोटी सी पतीली थी। राजा का दिल द्रवीभूत हो गया, घोड़े से उतरा, झोंपड़े के द्वार पे खड़ा रहा। ए इधर आना जरा, वो बैठे बैठे बोला क्या है। बोले मैं राजा हूं और ये मेरी अंगूठी ले लो और मेरी चेन ले लो, और बाजू बंद है, हीरे वीरे हैं, अपनी गरीबी मिटाओ और मकान बनाओ, ठाट से रहो। उस टाट पे बैठे हुए व्यक्ति ने अधिकार पूर्वक कहा कि जाओ किसी कंगले को दे देना, तुम्हारे यहां बिछौना नहीं है, बर्तन नहीं है, अनाज सामान का सामान नहीं है, तुमसे ज्यादा कंगाल कौन हो सकता है, ये तो मेरे राज्य के जंगल में हो, मेरे राज्य में ऐसा कोई कंगाल नहीं है। उसने कहा चलो किसको सुनाता है, मैं कंगाल नहीं हूं, मैं तो सोना बनाना जानता हूं। राजा चौकन्ना हुआ, गौर से देखा तो ये साधु है। बोले अच्छा महाराज क्षमा करना, जरा मुझे भी सिखा दो ना सोना बनाना। बोले अब बताओ कौन है कंगाल, कान पकड़, आप सम्राट हो, आप दाता हो और मैं मंगता हूं। राजा ने सोचा इतना बोलने से सोना बनाने की विद्या सीखूंगा, मैं अपने खजाने भरपूर कर दूंगा। राजा और राजकारणी कब की कान पकड़ना हो तो क्या देर लगती है घुटने टेकने में, और बगावती होने में क्या देर लगती है। राजकारणी और राजा कब बगावत करे छुपके सामने, अथवा कब घुटने टेके और आशीर्वाद चुनाव के दिनों में, कोई पता नहीं। कान पकड़ लिए, मैं कंगाल, आप शहंशाह दाता। बोले कुछ दिन सुबह सुबह आना पड़ेगा, खास अंगरक्षक को नहीं लाना है, गुप्त विद्या है, तुम जानो मैं जानो। हाँ बोले महाराज सही बात है। सुबह उठे तो सुबह की ताजी हवाएं मिले, बाबा के पास आए और बाबा ने सोना बनाने के बहाने उसको प्राणायाम कराए, ओमकार का गुंजन करा दिया। तो ओमकार का लंबा गुंजन आप करो तो हरि ओ जब ओमकार का म बोले तो होठ बंद होने चाहिए, हरि ओम बहत्तर करोड़ बहत्तर लाख दस हजार दो सौ और एक नाड़ियां सभी पर इस गुंजन की सात्विक असर पड़ती है। दुनिया में ऐसी कोई औषधि नहीं है, ऐसा कोई प्रयोग ही नहीं है जो इसकी बराबरी कर सके या इसके दसवें हिस्से का भी फायदा दे सके। ये ऐसा गुंजन है। और एक तो नूरानी नूर फकीर की दृष्टि पड़ी, दूसरा फकीर ने करवाया तो मंत्र तो चेतन हो गया। राजा को चार प्रकार के जो दोष होते हैं, वाणी चांचल्य, बिन जरूरी शब्द बोलना, प्रभावहीन वाणी, ये वाणी चांचल्य। राजा कहे चला गया तो हस्त चांचल्य, बैठे बैठे यूं करेंगे यूं करेंगे, कभी नाक खोदेंगे कुछ मिला तो घुमाते रहेंगे, नाक के गंदगी में से सुख ढूंढ रहा है, सुख के लिए कर रहा है ना, ये हस्त चांचल्य है। जहां सुख है उधर का पता नहीं, नाक की गंदगी में से सुख खोज रहा है, शराब पी के मुंह कड़वे कड़वे बेकार है फिर पीते, स्त्री पुरुष का सहवास करके उस समय नफरत होती है, फिर दस पांच दिन के गुड्डू की मां वो समझ गए कि आज गड़बड़ है। इसको बोलते हस्त चांचल्य, पाद चांचल्य, नेत्र चांचल्य, खाम खा के आंखें। राजा के ये दोष चलते गए, निकालने नहीं पड़े। तो मन एकाग्र हुआ, अनजाने में फैसले अच्छे आने लगे। दो चार दिन में तो बाबा का चस्का ऐसा लगा कि सोना बनाने के बहाने गए, लेकिन अब सोना बनाने की बात ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं लगती, बाबा को देखते जाएं और बाबा गुंजन कराते बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तुम तसल्ली ना दूसरा बैठे ही रहो, महफिल का रंग बदल जाएगा, गिरता हुआ दिल भी संभल जाएगा, काम से क्रोध से टेंशन से चिंता से। बाबा ने देखा बुद्धिमान भी है श्रद्धालु भी है, उद्देश्य सोना था, लेकिन उद्देश्य सोना नहीं है किसी का, उद्देश्य बेटा है नहीं, मैं इंजीनियर बन जाऊं डॉक्टर बन जाऊं वकील बन जाऊं ये उद्देश्य नहीं है, ये माना हुआ उद्देश्य है। एक होता है जाना हुआ उद्देश्य, दूसरा होता है माना हुआ। माना हुआ उद्देश्य वासना और बेवकूफी का बच्चा है, माना हुआ उद्देश्य बेवकूफी और वासना का बच्चा है, और जाना हुआ उद्देश्य शास्त्र संत और अपने पुण्य का पुंज है। जाना हुआ उद्देश्य क्या है? माना है उद्देश्य मैं ग्रेजुएशन कर लूं, मैं एमबीए कर लूं, मैं बीटेक कर लूं, ये मानी हुई बेवकूफी वाला उद्देश्य है। मैं जरा लोगों को दिखाऊं ऐसा भी हो सकता है, ये भी ये माना हुआ उद्देश्य बेवकूफी वाला है। असली उद्देश्य है कि हम सदा सुखी रहें, कभी दुख न आए, और सुख भी ऐसा कि स्वाभाविक मिलता रहे, सहज में मिलता रहे। अभी मैं आपको कहूं, भगवान करे कि चार दिन तक आप बहुत सुखी रहो, फिर भले मुसीबत आए, बाबा मैं नहीं 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 चाहोगे। चार महीने, चार साल तक आप सुखी रहो, फिर मुसीबतें ये आप पसंद नहीं करेंगे। जीवन भर सुखी रहो, बाद में तुमको रो रो मिले नरक, तो ये पसंद नहीं करेंगे। सदा सुख आपका उद्देश्य है, सब दुखों से सदा के लिए छुटकारा। केवल दुखों से छुटकारा नहीं, दुख नहीं है फिर भी आप कुछ ना कुछ सुख के लिए करेंगे, चैनल खोल के बैठ जाएंगे। अभी कोई दुख नहीं, आराम कर रहे हैं, तो क्या चुप बैठेंगे? सुख के लिए कुछ ना कुछ करेंगे। तो केवल दुख मिटाना जीवन का उद्देश्य नहीं है, केवल भूख मिटाना जीवन का उद्देश्य नहीं है, जीवन का उद्देश्य है नित्य नवीन सुख आता रहे, नित्य नवीन आनंद आता रहे। जैसे चंद्रमा से नित्य नवीन शीतलता बरसती है, ऐसे नित्य नवीन सुख की मांग है, और वो नित्य नवीन सुख देने वाली सत्ता आत्मा की है। तो वास्तविक में सबका उद्देश्य आत्म सुख है, लेकिन बेवकूफी से मान लेते मैं डॉक्टर बनूं, पढ़ लिख के सर्टिफिकेट लिया, फिर मान लेते कि मेरा बिजनेस चले, मेरे सर्विस मिले, फिर सर्विस मिली बिजनेस चला, फिर क्या, फर्नीचर लाऊं, पत्नी लाऊं, पति लाऊं, ये लाऊं, लेकिन उद्देश्य तो सुखी होना था। लाला के उलझ गए, आखिरी दुखी हो गए। कई डॉक्टर दुखी होकर पॉइजन खा लेते, कई बड़े बड़े लोग मरते समय दुखी होकर मरते, क्या ख्याल है? मना हुआ उद्देश्य है, जाना हुआ उद्देश्य नहीं है। कुछ दिन चला राजा का आना जाना। एक दिन महात्मा ने कहा, राजा तुम तो सोना बनाने के लिए आए थे, अभी क्यों पूछते नहीं? बोले महाराज, अब ये पता चला कि इतना जो सात खजानों में है उसको संभालने के लिए समय देना पड़ता है, तो ध्यान का समय निकालना पड़ता है। ध्यान में जो सुख शांति है वो तख्त पे बैठने में नहीं है, जो अंदर आनंद है तख्त पे बाहर की सुविधा मिलती है, और ये अंदर की शांति और माधुर्य मिलता है। और सत्संग से ये जाना है कि वास्तविक उद्देश्य परम सुख है, परम पद है। आत्मज्ञानात् परम ज्ञानम न विद्यते, आत्मा के ज्ञान से बढ़कर कोई ज्ञान नहीं है। आत्म सुखात् परम सुखम न विद्यते, आत्म सुख से बढ़कर कोई सुख नहीं है। आत्मलाभात् परम लाभम न विद्यते, आत्म लाभ से बढ़कर कोई लाभ नहीं है। दुनिया के बड़े बड़े अमीर, बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े सेनापति और बड़े बड़े विद्वान भी आत्मवेत्ता महापुरुष के आगे नतमस्तक हो जाते। सीएम पीएम जैसे भी अपना भाग्य बनाने के लिए बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि मैं भी रमन महर्षि से लाभविंत हुआ था, मुरारजी बोलते हैं, महर्षि के चरणों में बैठने से मुझे जो अच्छा लगा, शांति मिली थी, वो मैं अभी यहां शिकागो में प्रवचन कर रहे थे, मुरारजी देसाई शिकागो में मेरा प्रवचन था, उसी हॉल में वो भी बोल के गए थे, मेरे सामने नहीं, बाद में लोगों ने बताया कि मैं रमण महर्षि के चरणों में बैठा था तो जो शांति और सुख मिला था वो मुझे प्रधान पद पर नहीं है। तो बड़े बड़े समझदार लोग भी गर्व से कहते हैं कि मैं ब्रह्मवेत्ता का शिष्य हूं, फलाने महापुरुष का मैं साधक हूं, फलाने मेरे गुरु जी थे। तो कीमती चीजें, मूल्यवान चीजें बहुत कम होती, जैसे कामधेनु गाय, कौस्तुभ मणि, पारस मणि अल्प संख्या में होती। लोहा जितना काम में आता है सोना उतना काम में नहीं आता, लेकिन लोहे का बाहुल्य है और सोना कम है इसलिए उसकी कीमत है। तो चिंतामणि, कामधेनु, स्वांतिक मणि ये बहुत कम है। ये मणियां भी जहां तुच्छ हो जाती है, ऐसे आत्मवेत्ता रूपी महापुरुषों की मणि तो अत्यंत कम होती है। तो ऐसे गुरु मिले हैं, बाबा अब मैं सोना बनाना तो क्या करूंगा। राजा को तड़प तो थी नहीं, लेकिन संत के सानिध्य से बुद्धिमान और श्रद्धालु राजा ने अपनी बुद्धि का परिमार्जन किया और कहा कि बाबा मैंने तो पहले कहा था कि आप कंगले हो और मेरी अंगूठी ले लो, चैन ले लो, अपनी गरीबी मिटाओ, लेकिन वास्तव में हम लोग गरीब है। इतना होने के बाद भी सोना बनाना सीखूं, ये बनाऊं, ये करूं, ये पाऊं। कोवा दरिद्र विशाल तृष्णा, कंगला कौन है? जिसके पास ख्वाहिशें ज्यादा है, जितनी ख्वाहिशें अधिक उतना वो कंगला है। ख्वाहिश नहीं है तो आप सम्राटों के सम्राट हैं। ख्वाहिशें आपको परब्रह्म परमात्मा से दूर करके माया में भटकाती है। बहुत चाहिए तो गधाई है, गधा है। कम चाहिए तो शहनशाही है, और कुछ नहीं चाहिए तो खुदाई है। गीता में भगवान कहते हैं अनपेक्षा, जिसको कोई अपेक्षा नहीं, सुचिर दक्ष, शुद्ध खान पान, शुद्ध नजरिया है, कूड़ कपट छल नहीं। अनपेक्षा सुचिर दक्ष उदासीन गतव्यथा, उदमाना ब्रह्म, अपने ब्रह्म में ही उसका विश्रांति आसन है। गतव्यथा अनारंभ, ये पालूं, ये कर लूं, ये भोगलूं, कोई आरंभ नहीं। अनारंभ परित्यागी, स्थिति प्रज्ञस्त दोचते, उसने स्थिति कर ली मुझ मेरे स्वरूप में, मैं हूं वो है, जो वो है वो मैं हूं। अर्जुन ने पूछा था कि आप जिसकी महिमा गा रहे हैं, तत्व ज्ञान सर्वोपरि है, तो ज्ञानी के क्या लक्षण है? बोले प्रज्ञाति यदा कामान, बाहर से सुख लेने की कामना है जिसकी जल गई हो। प्रज्ञाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, ऐसा नहीं कि बाहर कामना नहीं, मन से निकली हुई है। आत्मैव आत्मना तुष्ट स्थिति प्रज्ञस्त दोचते, अपने आप में तृप्त है। ऐसे व्यक्तियों को इंद्रदेव देखकर नतमस्तक हो जाते हैं कि मुझे सुख चाहिए तो अप्सराए नाचे, गंधर्व गाए, साजी साज मिलाए, तब मुझे मजा आए। लेकिन ये आत्मवेता महापुरुष कैसा है, जहां नजर डालते हैं दो वचन कहते हैं, लोगों को ऐसे ही आनंद मिलता है, ऐसे ही शांति मिलती है, ऐसे ही माधुरी मिलता है। तस्य तुलना के न जायते, ऐसे महापुरुषों की तुलना किससे करोगे? ऐसा महापुरुष फटे टाट पे बैठा है तो भी सम्राटों का गुरु है, इंद्र का आदरणीय है, पूजनीय है। देवरिया बाबा हो गए, नाम सुना होगा, तो बड़े सिद्ध पुरुष हो गए। इंदिरा सरकार में कोई सिंचाई मंत्री बना और देवरिया बाबा के पास गया, बाबा इस साल में मंत्री बना हूं और अकाल पड़ा तीन तीन प्रांतों में, कुछ कृपा कर दीजिए। बोले इंदिरा को कह दो कि गौ हत्याएं बंद करा दे, ये सब इसीलिए उपद्रव हो रहे हैं, और देशों में भी जो अशांति है और बीमारियां हैं इसी का कारण है, गायों की हत्या प्रकृति को सही नहीं है। बोले बाबा जी वो तो मैं कहूंगा, लेकिन मेरी, बोले अच्छा मैं दुष्ट इंद्र को बोल देता हूं वर्षा करेगा, ले जहां बालू था वहां पैर रखा, बोले ये बालू ले जा, दो पैर घुमाए, गठरी बांध ले जा, तू तो मंत्री है, हेलीकॉप्टर में बैठे बैठे उस राज्यों में छिड़काव कर देना, वहां बरसात हो जाएगी। बरसात हुई। यदि वो संकल्प चलाए मुर्दा भी जीवित हो जाए, ऐसा पारसों का पारस आत्मदेव है। उसको छोड़कर जो गपशप लगाते हैं वो कितने अभागे होंगे, कितने अपने आप के शत्रु होंगे, समय को कितना बर्बाद करने की दुर्बुद्धि होगी। जो समय बर्बाद करता है साधना का, समय उसी को बर्बाद कर देता है, बिल्कुल पक्की बात है। राजा समय निकाल के अच्छी तरह से ध्यान में बैठने गया। बोले बोलो अभी सिखाऊं क्या पारस में सोना बनाना। बोले महाराज सोना बना के उसको संभाल कर राज्य विस्तार करके भी ये सुख नहीं मिलेगा जो आपकी कृपा से मिल रहा है। अब तो चाहता हूं कि कोई बड़ा मिल जाए अधिकारी तो राज्य उसके हवाले कर दूं, मैं तो आपकी सेवा में आ जाऊं। जैसे काशी का राजा कबीर जी की सेवा में, उनकी रोटी बनाने में, उनकी अंगद सेवा में लग गया था ना, मैं तो वैसा करना चाहता था। ये संसार तो बाबा भालू पकड़ाने वाला है। संत लोग कथा बताते, कहीं से आदमी जा रहा था, जंगल का इलाका था। पहले के जमाने में सिक्के चलते थे, क्वीन चांदी के, नोट बाद में आई। चार छह महीना कहीं काम करके महीने के जितने भी मिले उसे 100-200, तो छह महीने के तक कितने हो गए, 200-250 चांदी के रुपए हो गए। वो गठरी सिर पे रख के जा रहा था, जंगल से कहीं से रीच दौड़ता है और रीच खड़ा होकर मुंह पे पंजे मारता है। आदमी को पता था तो रीच जो खड़ा हुआ तो उसके पंजे पकड़ ले, पंजे तो पकड़े लेकिन पंजों के नाखून उस गठरी को लगे तो कुछ रुपए गिरे। वो रीच के साथ जूझ रहा है तो कुछ रुपए गिरते गए और ये पीछे हटता गया। दूसरा खड़ा खड़ा व्यक्ति देख रहा है, अभी अभी आया है। इसने देखा, बोलूंगा कि आओ रीच पकड़ो बचाओ तो नहीं आएगा। बोले देखो मैं रीच को जूझा रहा हूं और रीच लीड की जगह पर रुपए निकाल रहा है, रीच डबल की जगह से रुपए, आप समझ गए ना, लीड की जगह से रुपए, रुपया आगाड़ू छू, सीधी बात। रीच ने हलावी हलावी ने रुपया डबल कराऊ छू, समझी गया अंदर में गुजराती में। रीच को हिला हिला के उसको रुपयों की डबल करा रहा हूं। आया बोले मुझे दो। उसको रीच पकड़ा के रुपए छून के कुछ छोड़ के भागा। अब उसने हिलाया हिलाया, देखा कि तो अपने को धोखा हो गया। ताकने लगा तो तीसरा कोई आदमी निकला। अरे बोले देखो रुपए में इसको करवाया डबल, आपको भी चाहिए तो आ जाओ। उसने तीसरे को पकड़ाया, तीसरा चौथे को पकड़ाया। पकड़ने वाले उत्साह से तो पकड़ लेते, बाद में परेशान होते तो दूसरे का इंतजार करते। ऐसे ही हमारे परदादा ने दादा को व्यवहार का रीच पकड़ाया, बेटे बड़े हो जाओ तुम संभालो। परदादी ने हमारी दादी को पकड़ा दिया घर गत्थे का काम, दादी ने हमारी माँ को पकड़ा दिया बेटी बहू रानी अब तू आई है तू सब संभाल ले, क्योंकि मैं थक गई। ये रीच को हिला हिला के हम तो थक गए, बेटे तुम बड़े हो जाओ सब संभाल लो। क्या बाप बेटों को रीछ नहीं पकड़ा रहे हैं, सासू बहुओं को रीछ नहीं पकड़ा रही है, हाँ? ये है संसार, थकाने वाला है, सताने वाला, थकाने वाला, बल बुद्धि ओज तंदुरुस्ती छीन करने वाला है। है फूना दे हाल नू जिन्होंने वतन विसारिया, उनके हालत को और उनकी बुद्धि को नालत है जो परमात्मा वतन विसार के संसार की चीजों में उलझ जाते। यह तन काचा कुंभ है फूटत न लागे बार, कब शरीर मर जाए कोई पता नहीं, काम बाकी रह जाएगा, बकबक करने से क्या मिल जाएगा, कंपनी के डायरेक्टर बन गए तो क्या मिल जाएगा, सोने की लंका के मालिक भी बन गए रावण तो क्या ले गए। रावण जितनी तरक्की तो कोई इस जमाने में करके दिखा दे संभव ही नहीं है, फिर भी वो हार के गया और शबरी भीलन कुछ नहीं था फिर भी सब कुछ पाके ना। तो शबरी भीलन तो सभी बन सकते हैं, लेकिन रावण जैसा लंकाधीश तो सभी नहीं बन सकते, कोई भी नहीं बन सकता। शबरी के ताई ना ही ईश्वर को पाना तो आसान है, क्योंकि ईश्वर तो वही का वही है। संसार की चीजें तो प्रारब्ध पुरुषार्थ वातावरण जफाकृषि से मिलती और टिकती नहीं। भगवान तो केवल मांग हो, ईमानदारी से तड़प हो। गुरु गोविंद सिंह के दो चार शिष्य जरा मन चले थे, एक शिष्य ने जरा लापरवाही की, गलती की, तो तीनों शिष्य जो लॉबी होती है ना चेले चेलों की, गुरुजी ऐसा ऐसा इसको बुलाइए जरा दंड दीजिए। एक ने कहा ऐसे तो बर्तन मंजवाइए भंडारे के, दूसरे ने कहा नहीं नहीं जंगल से लकड़ी लाए और लकड़ी काटे, तीसरे ने कहा गुरुदेव इसको तो झाड़ू बुहारी की सेवा छोड़ दीजिए, ऐसी सजा दीजिए कि सुधर जाए। गोविंद सिंह तो रहे, गोविंद सिंह संत हैं, बोले तुमको किसने पूछा कि क्या सजा दें, और तुम इतने नालायक हो कि लकड़ी लाने की सेवा सजा बोलते हो, बर्तन मांजने की सेवा को सजा बोलते हो, नालायक। गुरुद्वार की कोई भी सेवा है तो वो सेवा है, अमृत है, इसको तुम सजा बोलते हो। जिसने गलती की वो 8 दिन तक कुछ काम नहीं करेगा, मैं उसे आज्ञा देता हूं कि 8 दिन तक चुप रहे, मौन रहे, जप करे, लंगर में एक टाइम रोटी खाए, एक टाइम उपवास करे, और तुम्हें सजा देता हूं कि तुम बकवास बंद करके एक दूसरे से मिलो नहीं, अलग अलग जगह पे तुम्हें भेजता हूं। जिसकी जिससे ट्यूनिंग होती है ना, वो एक दूसरे की बर्बादी के कारण होते हैं। ट्यूनिंग शब्द उन्होंने नहीं लिखा है, भाई क्या करता उड़िया बाबा ने डांट दिया डॉक्टर को, आंखें मूंद के बैठ के आए, वहां जाकर डांट के आए किसान को, क्या करता है, अगर हल ही चलाना था तो घर पे खेती छोड़ के इधर क्यों मरा, मेरे आश्रम में आकर खेड़ 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 करता है, बैठ के ध्यान कर, बेवकूफ कहीं का, खेती की वासना यहां मिटाने को आया। वो किसान को आश्रम की खेती कर रहा था छुड़ा दी, और डॉक्टर के गोड्डे पर लात मार दी, क्या करता है। अब डॉक्टर को देव जा हल चला, और हल वाले को बोलता जा डॉक्टर की जगह पे बैठ के ध्यान कर। किसी संत ने कहा बाबा इसको तो एक्सपीरियंस है ध्यान का, और उसको तो खेती का एक्सपीरियंस है। अब बोले उसी में चस्का आता है तो भगवान का चस्का कब लेंगे, इनकी वासना छुड़ानी है। मेरे कमरे में या किसी भी आश्रम में मेरे कमरे में मेरे लिए कोई टीवी बीवी नहीं है, न मैं पसंद करता हूं। कहीं नई जगह पर अनजाने लोग टीवी रख देते हैं तो मैंने टीवी चलाई हो ऐसा मुझे याद नहीं है। कभी कहीं एक मिनट के लिए कुछ ऐसा कर दिया होगा, फिर बंद भी मैंने किया होगा नहीं तो तुरंत किया होगा, मुझे याद नहीं कि मैंने कभी कोई टीवी चला के पिक्चर देखा अथवा कुछ गड़बड़ी या कुछ। हाँ कोई ऐसा वो जमाने का जो जहां प्रचार कुप्रचार होता है तो इलेक्ट्रॉन पे अभी दिखा देते कभी कभी, वो भी आधा मिनट तो बहुत हो गया, एक मिनट। मेरे इतने सारे सत्संग चलते हैं, मैंने सभी सत्संग मिलाकर 1 घंटा भी नहीं देखे होंगे, और कई लोगों के सत्संग चलते हैं। जब मेरा अपने दिल का दिलवर साथ में है तो क्या भाषण खोरी सुनना, दुनिया में क्या चल रहा है, कितना भरोगे दुनिया को। जनरल नॉलेज जरूरी है, सारे नॉलेजों का मूल में आ जा फिर देखा जाएगा। भूली जवाती छो भले लाखों किताबों सामटी, लाखों किताबें भले हम भूल जाएं, लाखों स्मृतियां भले रसातल में जली जाए, एक परमात्मा की स्मृति परमात्मा का ध्यान परमात्मा का ज्ञान पर्याप्त है क्या, वो पूर्ण नहीं है क्या। सुदर्शन चक्रवर्ती जी
बड़े प्रसिद्ध वक्ता हो गए और अच्छे उनके लेख आते थे। आप अलग से थोड़ा टाइम दीजिए। अलग से टाइम दिया उसकी सामने का बाबा मैं यहां का उत्तर प्रदेश का फलाने गांव का जिम्मेदार हूं, काला अक्षर भैंस बराबर अनपढ़ हूं, मुझे गीता पढ़ने की इच्छा हुई, किसी संत ने कहा गीता के श्लोकों पर उंगली घुमाता जा और भगवान पूछ रहे हैं, अर्जुन पूछ रहा और भगवान बता रहे हैं, तो ये ऊपर आए ना ऐसा अर्जुन उवाच कृष्ण उवाच उवाच माना बोले, ऐसा देखे तो समझ लेना कि भगवान बोल रहे हैं, अब अर्जुन बोल रहे हैं। बाबा मैं जानूंगा ही नहीं, मैं तो उल्टी गीता पकड़ी, मेरे को पता ही नहीं कि उल्टे अक्षर क्या होते सीधे क्या होते, ऐसा अनपढ़ ठाट था एकदम, अनपढ़ जाट ने एकदम जाट से भी ठाट। तो बाबा ने कहा श्री कृष्ण की सीधी मूर्ति देखे तो अक्षर ऐसे सीधे, और श्री कृष्ण के चरण ऊपर देखे और सिर नीचे देखे तो समझ लेना अक्षर उल्टे है, इतना तो समझोगे। बोले समझूंगा। जैसे ये फोटो है, पुस्तक पर फोटो है, तो अब ये सीधा फोटो है ना, तो जो भी पढ़ोगे सीधे अक्षर, और फोटो उल्टा किया तो समझ लेना उल्टे अक्षर, वो तो देखेंगे ना श्री कृष्ण के चरण ऊपर है तो उल्टे अक्षर, श्री कृष्ण के चरण नीचे है तो सीधे अक्षर। मैंने गीता पर उंगलियां लगाई ना बदला, हर लाइन पे उंगली घुमाऊं, बाबा जी ऐसा करते करते मैं तो बोलने लग गया। अब मैं क्या बोलता हूं, कोई भूत बोलता है या क्या बोल रहा हूं मेरे को पता नहीं, किसके आगे बोलूं, आप मेरे को जरा सुनिए। सुदर्शन चक्रवर्ती ने कहा कि मैंने बोला अच्छा भाई कर, तो उसने तो उठाई वो गीता और चालू कर दिया। अभी हूं तो पहले बोलता था, अभी बोलना चालू कर दिया। अनाशिता कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यास संन्यासी च योगी च नैराग्रे चाक्रिया यम संन्यासमिति प्राहुर्योगम तम विद्धि पांडवान संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन आरुरुक्ष मुने योगम कर्म कारणमुच्यते योगारूढसत शिव शम कारणमुच्य। अरे भाई हम तो इतना स्पष्ट नहीं उच्चारण करते, तेरे को किसने सिखाया? बोले बाबा कालो अक्षर भैंस बराबर में तो बस संत ने कहा है मान लियो, ऊ करते करते सब खुल गया। तो भगवान है, लेकिन भगवान की गीता भी देखो ऊ वाले को भी विद्वान बना देती। कैसा है इस गीता का प्रभाव, तो आपको अगर बकबक करना भी है तो गीता लेके बैठ जाओ, अपने कमरे में ही बैठ जाओ गीता लेके भागवत लेके, इतना ही तो करो और नहीं तो हंसो रो खेलो, भक्ति योग हो जाएगा, ध्यान योग हो जाएगा, विनोद योग हो जाएगा, बकबक में तो तुम निंदा करोगे ही, बिल्कुल पक्की बात है। चार माइयां अकेले बैठे और निंदा ना करे संभव ही नहीं है। चार मिले चोटियां कुटे किसी की रोटियां, अप्रैल फूल मनाने के लिए बहुत लोग इकट्ठे हुए थे, और जो बड़े में बड़ा झूठ बोलेगा उसको सिल्वर का कप्र का भी दिया जाएगा। किसी ने कुछ बंडल, किसी ने कुछ बंडल मारे, अभी कोई फर्स्ट नंबर नहीं आ रहा है, किसी को 50%, किसी को 40% मार्क। हाँ जी, कोई बोले झूठ, किसी ने कुछ झूठ बोली, किसी ने कुछ। एक नेता आया, बोले क्या झूठ बोलने के लिए इतना मेहनत करते हो, मैं 3 बार चुनाव लड़ा हूं, 2 बार तो मैं मंत्री बना, आज तक मैंने झूठ नहीं बोला और आप झूठ बोलने के लिए इतनी मेहनत करते हो। बोले नेता इससे बड़ा झूठ हो ही नहीं सकता, चुनाव लड़े 2 बार मंत्री बने और कसम खाई कि मैं बिना राग द्वेष के निर्णय करूंगा और अपने चमचों का तो घर भर दिए होंगे। फिर दूसरा जोक्स भी है, कैसा ही कहीं फंक्शन हुआ और एक आदमी पहुंचा, अरे बोले झूठ बोलने के लिए इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, झूठ बोलने की कोई जरूरत ही नहीं है। एक बगीचा था म्युनिसिपैलिटी का, वहां 4 माइयां बैठी थी बांकड़े पे और आधा घंटे बैठी रही, आपस में बात नहीं किया। बोले इससे बड़ा झूठ हो ही नहीं सकता, 4 माइयां आपस में बैठे और बात न करे, आधा घंटा बैठी रहे बगीचे में अकेले और आपस में बात न करे, हो सकता है क्या? हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे, निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करें। ये बोलते भी हैं सुनते भी हैं लेकिन करते फिर वही है चमचागिरी और निंदा। मनुष्य जन्म में अगर हम नहीं सुधरे तो फिर कब सुधरेंगे? ऐसे तो चिड़ियां भी भक्ति रहती है, बकरियां भी भक्ति रहती है, बैं करती रहती। सिंधी जगत में कहावत है, सिज लथो सांझी थी, सूर्य अस्त हुआ संध्या हो रही, पखिन वर आया पख, पक्षियों ने पंख चलाए अपने अपने घोंसले के तरफ, किन मेड़ा माणक मोती, किसी ने माणक मोती संजोए, किसी ने लाखों रुपए संजोए, प्रभु तेरी प्रीति के पंख देना कि मैं तो तेरे निकट हो जाऊंगा, बस तेरी भक्ति और तेरे ज्ञान के, तेरी अनुष्ठान और प्रीति के पंख दे बस। अंगद थे ना, गए रावण की सभा में, टकुर 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 देखने लगे रावण को, सिर से पैर तक, पैर से सिर, ऐसे देखे कि रावण को हंसी आ गई कि अरे क्या देखता है अंगद। बोले मुझे संशोधन करना है आपको देखकर। क्या संशोधन करना है? बोले हनुमान ने कहा था कि 10 सिर और 20 आंख वाला एक अंधा रहता है लंका में, लेकिन मुझे कुछ और ही दिखता है। तो देखा कि कुछ ये मेरे, हनुमान ने तो नेगेटिव बोल दिया है, कुछ पॉजिटिव बोलेगा। बोले तुम्हें क्या दिखता है? बोले आप 10 सिर और 20 आंख वाले अंधे हैं, ये बात मुझे नहीं समझ में आती। 10 शीश और 20 नैना और 10 शीश 20 काना अंधे भी हो बहरे भी हो। उन्होंने खाली अंध कहा था, हमें कहता हूं बधिर भी हो तुम। शिव जी का सत्संग सुना लेकिन कोई बात व्यवहार में नहीं लाए, बहरे भी हो। मैं कर दूंगा वो कर दूंगा, मैं तो राम जी का दास हूं, स्वामी स्वामी में युद्ध होती है, दास को दंड देना क्या बुद्धिमानी है? फिर भी अगर है तुम्हारे में दम तो मैं पैर यहां रखता हूं, मेरा पैर उठा के दिखाओ तो मैंने मेरी माता सीता जी हार ली, लो सीता जी की, हाँ सीता जी को दांव पे लगाने की कैसी गुरु भक्ति हिम्मत है। भगवान रामचंद्र ने अर्धांगनी सीता जी हारी, मैंने मेरी मां सती सीता हारी। उठा, उठाया तो उठा नहीं। बोले देखो तुम अंधे भी हो बहरे भी हो, तुमको तो पता है सीता जी मेरे पास है, फिर हार जीत का सवाल ही नहीं था, गद्दी छोड़ के यहां तक नाक कटवाने की क्या जरूरत थी? सत्संग सुना होता, अमल में लाए होते तो अभी नाक क्यों कटवाते? सीता जी जब तुम्हारे पोजीशन में है तो सीता मैंने हारी, माता जी मैंने हारी, मेरी बात तो तुम बहरे भी हो नहीं समझ पाए। और ऐसे तुम्हारे जैसे 12 प्रकार के लोग होते हैं, जो मांसाहारी है वो जीते जी मरा हुआ है, और जो सत्संग सुनकर भी सत्संग के वचनों को अमल में नहीं लाता और बकबक करता है या करवाता है, सुनता है या सुनाता है, वो भी जीते जी मरा हुआ है। और 12 बातों में से एक भी बात ऐसी नहीं है कि जो जिसका संयम करने से हमारा फायदा ना हो। 12 ही बातें शास्त्रों की बताई है अंगद ने, लेकिन रावण ने अंगद की बात पर ध्यान दिया होता तो सुधर जाता। नहीं सुधरा तो आखिर पश्चाताप के मत मरा। अब अंगद तो राम जी का सेवक था, अंगद की बातें अपनी पर्सनल नहीं थी, शास्त्र की बातें थी। ऐसी मैं भी जो बोल रहा हूं मेरी अपनी अलग से कोई नई बात नहीं है, शास्त्र की बात बोल रहा हूं। अगर बकबक सुनने वाले और बकबक करने वाले इस बात को सकारात्मक ले तो उनका भला हो जाएगा, उल्टा सोचेंगे तो अशांति होगी, निद्रा बिगड़ेगी, फिर बीमारी चालू हो जाएंगी, खिन्नता चालू हो जाएंगी, नहीं होगी। उल्टा लेने से बीमारियां होती कि नहीं होती, तो आप सीधा अर्थ लीजिए, उल्टा लोगे तो बीमारी आ जाएगी। फिर जब तक आत्म साक्षात्कार नहीं होता है तब तक आपको संभल के समय का सदुपयोग करना चाहिए। जो समय का दुरुपयोग करता है समय उसे बर्बाद करके फेंक देता है, जो पद का दुरुपयोग करता है पद उसको चित्त कर देता है, जो सुख सुविधा ध्यान भजन के माहौल का फायदा नहीं उठाता तो माहौल उसे धकेल देता है, नीचे गिरा देता है। फिर मैं घर जाऊं, मैं इधर जाऊं, मैं उधर जाऊं, फिर बोले मैं ये करूं, मैं वो करूं, फिर रोते रोते एसिड पी लेते, पहले कैसी जिंदगी थी अब मैं क्या कर रहा हूं, बापू ने समझाया मैंने माना नहीं, और एसिड पी के मर गए, बाद में खबर आई। तो जो पद मिलता है उसका सदुपयोग करना चाहिए, जो समय मिलता है उसका सदुपयोग करना चाहिए, जो सीख मिलती है उसका सदुपयोग करना चाहिए, उल्टा नहीं लेना चाहिए। अंगद ने रावण को आगाह किया कि रावण जो मांसाहारी और शराबी है वो जीते जी मरा है, और जो काम के अधीन होकर न देखे अमावस्या, न देखे पूर्णिमा, न देखे एकादशी और न देखे जन्माष्टमी, न देखे पत्नी का स्वास्थ्य, न देखे अपना भविष्य, और वेश बदल के भी परस्त्री का अपहरण करे, वो भी जीते जी मरा है, उसमें तेरा नंबर है। तेरा नंबर मैंने मिला है, अंगद ने कहा होगा कि नहीं मुझे पता नहीं। जिसके पास धन है लेकिन अवसर पड़ने पर दान पुण्य नहीं करता, जरूरतमंदों को अथवा धर्म के जगह पर उस धन का सदुपयोग नहीं करता, और प्रोग्रेस 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 करके छोड़ के मर जाता है, वो जीते जी मरा हुआ है। रावण तुम ध्यान से सुनो, चौथा वे व्यक्ति हैं विमुढ़, जो ठीक तरह से मूर्खता की पराकाष्ठा पे है। विमुढ़ा नानु पश्यन्ति, पश्यन्ति ज्ञान चक्षुष, अपने हितेशी की बात को भी उल्टा ले ले। गुरु ने कहा, माता पिता ने कहा, संत ने कहा हमारी भलाई के लिए, लेकिन हम सोचे कि देखो हमारी इज्जत गई, हमारा ऐसा हुआ, हमारा ऐसा हुआ, हमारा ये हुआ, तो ये विमुढ़ व्यक्ति भी जीते जी मरे हुए हैं। पांचवा वो व्यक्ति जीते जी मरा है जो अति दरिद्र है और फिर भी दरिद्रता मिटाने का उद्योग नहीं करता। एक तो धन अन्न की दरिद्रता होती है, दूसरी भाव की दरिद्रता होती है, तीसरी ज्ञान की दरिद्रता होती है। सत्संग से ज्ञान की और भाव की दरिद्रता मिटती है, और सत्संग से अन्न धन की भी दरिद्रता मिट सकती है, लेकिन जो दरिद्र है और सत्संग में नहीं जाता और दरिद्रता नहीं मिटाता वो भी जीते जी मरा हुआ है। रावण छठा वह व्यक्ति मरा हुआ है जो अति वृद्ध है फिर भी चस्का नहीं छोड़ता, पत्नी भी साथ हो, चस्का भी साथ हो, पति भी साथ हो, विकार भी साथ हो, वो वृद्ध जीते जी बिल्कुल मरा हुआ है। बुढ़ापे में संयम करना चाहिए, खाने का, पति पत्नी के सानिध्य का। सातवां यह व्यक्ति जीते जी मरा समझो जो सदा रोग ग्रस्त है। मैं बीमार हूं और कहराता रहता है, अब मैं ठीक नहीं हो सकता हूं, ऐसी गांठ जिसने बांध ली वो समझो मरा हुआ ही है। आत्मव्यय व्यक्ति भी मृतक मानिए रावण, जो क्रोध में अपना हृदय तपाता है और दूसरे का हानि कर देता है, अपना हृदय शीतल रखकर गर्जना करके दूसरे का भला करे वो तो महापुरुष है, लेकिन क्रुद्ध होकर अपनी और दूसरे की जो तबाही करता है उसको भी मरा हुआ समझो। हे लंकेश, नौमा व्यक्ति वह विमुख, वह मृतक है जो सर्वाधीश सर्वेश्वर सब में बसे हुए वासुदेव की अवहेलना करके अपनी छोटी मोटी योग्यताओं को सर्वोपरि मानता है। मेरी लंका है, मेरा धन है, मेरी डिग्रियां है, मेरा सत्ता है, मेरा मकान है। अरे तू पानी की बूंद था बुद्धू, मां का खून पीकर तो शरीर बना है, और मैं फलाना हूं, मैं ढींगना हूं, जो अपनी ही मैं की हेकड़ी करता है ना, वो भी जीते जी मरा है। और दसवां वह व्यक्ति भी मरा हुआ है लंकेश, जो श्रुति और संत, श्रुति माना उपनिषद वेद, वेद और संत के सिद्धांत और बात को सुनता नहीं, मानता नहीं, अपितु अपना ही चलाता है, वो व्यक्ति भी मृतक ही जानो। और ग्यारहवां वो व्यक्ति भी मरा हुआ है जिसका तन दुर्बल है और देह की हवस है, शरीर में तो दम नहीं है, पचाने का दम नहीं और खालियां ठांस के, और भी शरीर में ऊर्जा नहीं है, लेकिन पत्नी के बिना, पति के बिना, ऐसे बिना ही, और नहीं तो एक पलंग पे तो रहो, वो भी मुर्दा ही है। उम्र हो गई तो अलग पलग करो, चिपक के बर्बादी को मत बुलाओ, जल्दी बुढ़ापे को मत बुलाओ। 50 साल के बाद एक दूसरे के स्पर्श से जो आराम करना चाहते हैं उन्हीं को भी समझो कि मुर्दे हैं, मुर्दे। तेरे बिना मेरे को आराम नहीं आएगा, मेरे बिना मुर्दे मुर्दे, मरने वाले शरीर के बिना आराम नहीं आ रहा है, तो आराम हराम है ना, मुर्दा ही तो है। और बारहवां व्यक्ति वो मृतक समझो जो दूसरों की निंदा में रसवान है, क्योंकि निंदा सुनने से शरीर में हानिकारक द्रव्य पैदा होते हैं, वो भी मौत के नजदीक जा रहा है, उसको भी मृतक समझो। और 13वां वह मृतक समझो रावण जो अंधखानी है, एक बार पकड़ लिया तो पकड़ लिया, बस मैं तो ये करूंगा, मैं सीता जी लाया हूं तो नहीं छोड़ूंगा, चाहे जूते पड़े, चाहे 100-100 जूते खाएं, तमाशा घुस के देखेंगे, चाहे लंका जल जाए लेकिन तमाशा फिर भी देखेंगे, ऐसा तुम्हारे जैसे अंधों की भी कमी नहीं है। अच्छा रावण, समझ सके तो समझना, मैं तो ये गया, जय श्री राम। रावण देखता गया कि अरे अंतर्धान भी हो गया, मैं अंतर्धान हुआ तो सीता चुराया, लेकिन ये अंतर्धान हुआ तो सीता जी चुराने में क्या हानि है, ये सब सुना के गया है, लेकिन क्या करे, तामस देह जा में प्रीति न होगी, हम राक्षस लोग हैं, तामसी है, प्रीति नहीं होगी, इसलिए श्री राम से द्वेष करूं ताकि राक्षस रावण का चिंतन करते करते मरेंगे तो सदगति होगी। बुद्धिमान रावण को मैं शाबाश देता हूं, समय तो बर्बाद नहीं किया उसने, रास्ता गलत पकड़ा लेकिन उद्देश्य उसका ऊंचा था। मुझे रावण के प्रति नफरत नहीं है, मुझे आतंकवादियों के प्रति नफरत नहीं है। सबके मूल में तो सच्चिदानंद परमात्मा है, तो जो बकबक करते हैं सुनते हैं उनके लिए काय को नफरत करूंगा? तरस आता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय, प्रीति देवाय, माधुर्य देवाय। शोर मत करो, मधुरता में चुप हो जाओ, काय को जोर से चिल्लाते हो? ओम आनंद देवाय, माधुर्य देवाय, ओम ओम प्रभु जी, ओम प्यारे जी, ओम मेरे जी, ओम ओम श्री परमात्मने नमः। ओम जीभ तालू में लगा दो, जो सुना है उसे अपना बना लो। शांति, प्रीति, माधुर्य।